हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। स्मरतव्यः सततं विष्णुं, विस्मर्तव्यो न जातु चेत्। सर्वे विद्धि निषेदास्यो एतयोरेव किंकरः, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम्। प्रेम तुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्थादहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे बिभस्व मृतुमेतदेव, गोविंद दामो धर्माधवेति। वंशी विभूषित करा नवनीरधाभा, पीतांबर धरुण बिंब फल
धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्व अहम् न जानि व्रजे वसन्तम् नवनीतचोरम् गोपांगनानां चदुकूलशोरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद अध्याय 16। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। शुनक मुनि सुत गोस्वामी से अत्यंत ही सुंदर बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, अथवास्य पदाम्बुज मकरंद लिहां सताम किमन्यैर सदालापै आयुषो सद यद सत्वयः। अथवास्य पदाम्बुज मकरंद लिहां सताम किमन्यैर रसदालापै आयुषो यद सत्व्ययः। अथवास्य पदाम्बुज मकरंद लिहां सताम किमन्यैर रसदालापै आयुषो यद सत्व्ययः। शब्दा है अथवा अन्यथा अस्य उसका यानी भगवान श्री कृष्ण का पदाम्बुज चरण कमल मकरंद लिहाम यानी कमल पुष्प के मधु को चाटने वाले सताम निरंतर जीवित रहने वालों के किमन्ये अन्य किसी वस्तु के से क्या लाभ। असत भ्रामक आलापय विषय प्रसंग आयुष्य आयु में यत जो है असत व्यय जीवन का अपव्यय। अनुवाद, भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु से मधु के चाटने के आदि हैं, उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब तात्पर्य को ध्यान से सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय हो।
श्री प्रभुपाल जी कह रहे हैं,
भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य तल पर रहते हैं, अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से पूर्ण है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता सारे विश्व में पूजित है। जो राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान सांसारियों के लिए हो, उनके अच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है, उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं, यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्म देव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कब हर वस्तु को अगली मंजिल के लिए छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई कथा कितनी ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होती। गोलोक वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक लोक में अवतरित होते हैं तो वे अपने निज धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं, उनके पांव कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के पांव कमल चरण हैं। जीव स्वाभाविक रूप से शाश्वत है, वह भौतिक शक्ति यानी माया के संपर्क में रहने से जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं, जिसमें महाराजा परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया उसके विषय में बताया जा रहा है। जब कलयुग को पहली बारी महाराजा परीक्षित ने देखा तो उसने राजा का वेश धारण किया हुआ था और वो क्या कर रहा था, गौ और बैल, जो गौ मिथुनम यानी जो गौ और बैल की जो जोड़ी थी उस पर पांव से आक्रमण कर रहा था, पांव से प्रहार कर रहा था। तो जब उन्होंने उनकी अब गलती देखी, उनका ये अपराध देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने बड़ा ही दंडित किया उनको, जो कलि था उसको बहुत दंडित किया। और इतना सुनाने के बाद सूत गोस्वामी को शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं कि उनको दंडित किया, कस्य हेतुर निज ग्राह कलिम दिग्विजय निरपह निर्देव चिन्ह शूद्र कौसो गाम या पदाहनम, वो ऐसा व्यक्ति जो शूद्र था, शूद्र से भी गया गुजरा था और उन्होंने राजा का वेश धारण किया होता, पहला अपराध। उसका पहला अपराध ये था कि वो राजा बनने के योग्य नहीं था, लेकिन वो भ्रामिक करने के लिए राजा बना हुआ था। और दूसरा कि गाम यह पाद हनम, कि वो गऊ को पैर से अपने लात से आक्रमण कर रहा था, तो ये उसको खाली उन्होंने दंडित क्यों किया, उसको तो जान से मार डालना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें इस कथा में इतनी रुचि नहीं है, क्योंकि इसके विषय में श्रवण करके क्या लाभ। अगर ये कथा, मेरा प्रश्न जो है वो, अगर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम, अगर वो कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, कृष्ण से संबंधित है, तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। लेकिन यदि ये कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो हमें हमारा उत्तर भी नहीं चाहिए कि उसने उसके साथ प्रहार किया था जब उस लात गाय को मारी थी, और फिर महाराजा परीक्षित ने उन्हें केवल दंडित किया था फिर छोड़ दिया था। ये है तो बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात भी हमें तभी सुननी है जब वो कृष्ण से संबंधित है, वरना हम नहीं सुनना चाहते। तो मानो सूत गोस्वामी ऋषियों से पूछ रहे हैं कि मैंने जब तुम लोगों को यह सुनाया है कि ऐसा हो रहा था एक बार परीक्षित के जीवन में, तो फिर ये महत्वपूर्ण तो होगा ही, फिर तुम लोग इसको ऐसे कह रहे हो कि नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते अगर ये महत्वपूर्ण प्रसंग है? तो उसका उत्तर देते हैं, अथ वास्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम सताम। बहुत बड़ी और गंभीर बात बता रहे हैं। वे कह रहे हैं सताम, सताम यानी जो निरंतर जीवन जीवित रहने वालों, यानी कि वो व्यक्ति जो कभी, जिनका कार्य कभी क्षय नहीं होता है, जो सदैव भगवान से जुड़े होते हैं। भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य क्रायते महतो भयात्। कि ये जो भक्ति का पद है उसमें कोई घाटा नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, और थोड़ा सा भी यदि कोई इस रास्ते पर चलता है तो वो सदैव रहने वाले आनंद को प्राप्त करता है और संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के भक्त होते हैं, उन भगवान के भक्तों ने भगवान के चरण कमलों के मधु को चख लिया है। मकरंद लिहाम यानी भगवान के चरण कमल, कमल पुष्प है, और उनके मधु को टेस्ट कर दिया है। अभी एक बार जो असली मधु यानी जो हनी होता है ना, शहद, उसका यदि एक बार टेस्ट कर लेता है, फिर उसको संसार की चाहे कोई भी दूसरी मीठी चीज खिलाई जाए, क्योंकि उसने असली मधु को टेस्ट किया है ना, तो अब उस भंवरे को और कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान के भक्त जो हैं, वो उन भंवरों की तरह हैं जो कमल के अंदर से मधु निकालते हैं, और जब वो वास्तविक मधु को टेस्ट कर चुके हैं तब उनको कुछ और अच्छा नहीं लगता। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 2.59, वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम् रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कि देहदारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। यदि वो भगवान का भक्त नहीं है, यदि उसने भगवान के चरण कमल के मधु को टेस्ट नहीं किया है, तब उसके हृदय के अंदर एक इच्छा बनी रहती है, भले ही वो नहीं करता है, वो एक ज्ञान मार्ग में बढ़ता है और उसे पता चलता है कि इंद्रिय तृप्ति से मेरा कल्याण नहीं होगा, तो वो इंद्रिय तृप्ति को भले छोड़ दे, परंतु फिर भी एक टेस्ट बना रहता है कि मुझे इसमें मतलब इच्छा एक दिल में होती है, परंतु रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवानि वर्तते, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस का अनुभव जब उसे हो जाता है, वास्तविक भगवान के चरण कमलों का टेस्ट आ जाता है, तो फिर उसे किसी भी भौतिक वस्तु में आनंद नहीं आता है। यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु को श्रवण करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण कथा का अमृत पान किया है। कृष्ण कथा के विषय में आजकल सुनाने वाला कुछ भी सुना देता है। आज हम देखते हैं प्रसंग बड़े होते हैं, कुछ भी सुना देगा, क्रिकेटर्स की स्टोरी के बारे में सुनाएगा, फिल्म एक्ट्रेस के स्टोरीज के बारे में सुनाएगा, पति पत्नियों के झगड़ों के विषय में सुनाएगा, और एक श्लोक बताएगा भगवद गीता का, और बीच में सब कचरा डाल 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 के आपको खिला देगा, और सुनने वाला भी आनंद से सुनेगा और कहेगा इसकी कथा में मजा बड़ा आता है। ये कथा मजा करने के लिए, ये कथा तो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए है, ये कथा तो जन्म मृत्यु से बचाने के लिए है। यदि आप सत्संग में आकर भी यही भौतिक वस्तुओं के विषय में श्रवण करके आनंदित होते हो, तो फिर किसी फिल्म थिएटर में चले जाओ, वहां पर अच्छा मनोरंजन मिलेगा। ये भगवान की कथा को क्यों बदनाम किया जा रहा है ऐसा? लेकिन यहाँ पर हमें बता रहे हैं शौनिक मुनि कि जो वास्तव में भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के शरण कमलों के मधु को एक बार टेस्ट किया होता है, फिर किमन्ये मतलब अन्य किसी वस्तु से उनको कोई लाभ नहीं होता है। संसार क्या कर रहा है, संसार में क्या हो रहा है, भौतिक वस्तु या व्यक्तियों के क्या क्या यहाँ पर आकर्षण है, इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के अंदर उसको श्रवण करने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि असत, कि मानिए असत, वो असत है, भ्रामक है। इस भौतिक जगत का कोई भी जो बात होती है, कोई भी वस्तु ऐसी है जो श्रवण करने के योग्य नहीं है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके विषय में श्रवण करना हमारे लिए कभी भी लाभकारी नहीं होता है, बल्कि वे कहते आलाप है। ये विषय प्रसंग जो है आयुष आयु में असत व्यय, जीवन का यदि हम अपने जीवन में अपना ये जो हमारे पास जो सबसे बहुमूल्य वस्तु है वो हमारी आयु है, तो सबसे बहुमूल्य वस्तु उसको अगर हम इन उन कथाओं में, उन भ्रामिक कथाओं को श्रवण करने में सुनने में टाइम वेस्ट करेंगे, तो इसका क्या लाभ होगा? क्योंकि हमारा जीवन हमें यूं नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस जीवन को खत्म करने से पहले, इस जीवन के समाप्त होने से पहले, इस भौतिक जगत की आसक्ति को समाप्त करके कृष्ण के चरणों के अंदर अपनी आसक्ति को जोड़ सके। तो यदि कथाओं में भी हमें भौतिक वस्तुओं के विषय में सुना सुना के बताए, बस उसी की ओर आकर्षित किया जाएगा, तो फिर वो जो वास्तविक रस है ना, जो कृष्ण कथा का, जो कृष्ण के भक्तों में, देखो यहाँ पर शौनक मुनि जो है वो कह रहे हैं कि हमें वो प्रसंग सुनना नहीं है जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। यानी कि अगर एग्जाम्पल भी देनी है ना, तो केवल उसी भक्त की देनी चाहिए, कोई भक्त के विषय में बताना चाहिए जिसका भगवान ने उद्धार किया हो। तो इस तरह से क्या होगा, हृदय के अंदर भगवान के अतिरिक्त और कोई जाएगा नहीं। भगवान के अतिरिक्त क्योंकि कर्णों ने कुछ सुना नहीं, तो हृदय किसी और की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। पूरा का पूरा प्रसंग भले कुछ भी नहीं आता समझ में, तो एज इट इज शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य सुना के उसको ही समझा देना चाहिए, तो वे उसी से समझ में आएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत ही कीमती हमारा जीवन है, तो इस जीवन को व्यर्थ वस्तुओं के या व्यक्तियों के विषय में श्रवण करने से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं किमन्य रसदालाप है आयुषो यद असत व्यय, फिर अपनी इस आयु को क्यों हम भौतिक वस्तुओं के प्रसंगों में सुनने और अपनी इस आयु को नष्ट करें। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमें कब हर वस्तु को अगली मंजिल पर के लिए छोड़ने के लिए आदेश मिल जाएगा। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की कथा में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कान केवल कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए रिजर्व कर देने चाहिए। केवल कृष्ण के अतिरिक्त मुझे और कुछ श्रवण नहीं करना है, क्योंकि आयु इतनी नहीं है कि उसमें भौतिक वस्तुओं के विषय में श्रवण कर करके उसको जाया किया जाए। वास्तव में एक मनुष्य को सदैव यह विचार रखना चाहिए अपने जीवन में कि हमारा जीवन किस तरह से हर क्षण मृत्यु के मुख में जा रहा है। ये काल हमारी कितनी आयु खा गया है, समय कितना जल्दी बीत रहा है। अभी हमें याद है कि हम कितने छोटे थे, स्कूल जाते थे, और अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना? किसी की 20, किसी की 25, किसी की 40, किसी की 45। तो इतना सारा समय, सारा काल खा गया, और अभी तक इतनी उम्र होने के बाद भी अभी तक भगवान की कथाओं में रुचि नहीं। अभी भी वही भौतिक वस्तुओं को श्रवण करते 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 कब तक हम अपने जीवन को सत्यानाश करते रहेंगे? तो ये जो हमारा समय अभी, वो बहुत ही सुंदर समय है, और प्रेजेंट समय को हमें हमेशा सोचना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान की क्षमा कीजिएगा, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस प्रेजेंट समय को हम किस तरह से भगवान की भक्ति में लगा सकें। और उसका एक ही तरीका है कि हम अधिक से अधिक भगवान के विषय में श्रवण करें। यदि हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा। यदि मन भगवान में लगेगा तो फिर हम आसानी से भगवान को स्मरण कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर शौनक मुनि हमें यह आदेश दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी जाया हो रही है यदि आप भगवान के अतिरिक्त किसी और की कथा को श्रवण कर रहे हो। इसलिए किमन्ये असदालय पर आयुषो यद असत्व्ययः, इन फिजूल की बातों में आलापय यानी फिजूल के प्रसंगों में जो भ्रामक हैं, जो असत हैं, उनको श्रवण करके क्यों अपनी आयु को वेस्ट किया जाए। हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक श्वास बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा प्रेशियस है। इस संसार में हम अपने जीवन को भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते 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 समाप्त कर देते हैं। एक व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि मैं इतना सारा धन कमाऊंगा, ऐसे ये कार्य करूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। तो ये वस्तुएं प्राप्त करते 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 अपने जीवन को समाप्त कर देता है, और जब मृत्यु आ रही होती है, मृत्यु आ गई होती है, तब वो यदि यमराज को ये कह दे कि यमराज, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, वो सारा का सारा धन तुम्हें दे देता हूँ, परंतु मेरी आयु मुझसे मत छीनो, तब वो क्या यमराज आपको छोड़ देंगे? एक जीव अपने पूरे जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करते 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 अपना पूरा जीवन समाप्त कर देता है, तो क्या बड़े से बड़ा ज्ञानी अपने मृत्यु होने से बचा सकता है, यमराज से खुद को बचा सकता है? नहीं। हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा ऐश्वर्य, हमारा ज्ञान, कुछ भी हमारी आयु को नहीं बढ़ा सकता। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मैं मृत्यु बनकर आऊंगा और तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा यदि तुमने मेरी भक्ति नहीं की। वास्तव में अब तक क्योंकि हमने केवल भौतिक विषयों के विषय में ही श्रवण किया है, इसीलिए वो भौतिक वस्तु और भौतिक व्यक्ति ही हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बचपन से लेकर हमने जब से श्रवण करना समझना सीखा है, तभी इस भौतिक संसार की वस्तुओं के विषय में ही हमें श्रवण करने को मिला है। यही कारण है कि हमारी आसक्ति भौतिक वस्तुओं की ओर बढ़ गई है। भौतिक व्यक्ति, भौतिक प्रसंग बहुत लुभावने लगते हैं। दिल करता है और सुना जाए, लेकिन वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं, इसीलिए यहाँ पर शुद्ध भक्तों की सताम की बात हो रही है, जो पदाम बोज मकरंदलिहाम, जो वास्तव में भगवान के चरण कमलों की मधु को चाट चुके हैं। एक बार जब उनको भगवान के चरण कमलों का रस अमृत पीने को मिल गया, तब वो उनको कोई भी भौतिक वस्तु टेस्ट करने में अच्छी ही नहीं लगती। तो मानो कोई पूछे कि अभी यहाँ श्रीमद् भगवद गीता, जो कि पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में राजनीति कूटनीति से संपूर्ण भरी हुई है, और ये महाभारत इत्यादि उसमें तो केवल राजनीति है, पॉलिटिक्स है, अर्थशास्त्र है, तो वो भला भगवान के विषय में वो भला हमारा कल्याण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य धरातल पर हैं, अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यदि जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं वो भगवान के विषय में है या भगवान के शुद्ध भक्तों के विषय में है, तो वो ही हमारा कल्याण करेगी। तो इसीलिए केवल भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की ही कथा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है साहानि तन महच्छित्रम सामोह सच विभ्रमः यत् श्रवणताम क्षणोयापी वासुदेव न चिंतन। कि जीव का सबसे बड़ा हानि, जीव का सबसे बड़ी हानि क्या है जानते हो? जब वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और श्रवण करता है, क्योंकि जैसे ही कुछ और श्रवण किया तो डायरेक्ट से हमारी चेतना उसी ओर आकर्षित होती है ना। कुछ भी हम लोग सुनेंगे तो उसी के बारे में हम चिंतन करेंगे। इस भौतिक वस्तु भी हम देखते हैं, भौतिक जीवन में भी किसी के बारे में सुनेंगे, कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, तो उसके बारे में जब आपको एडवर्टाइज किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो उसकी ओर आकर्षित उत्पन्न होगा ना। तो यहाँ पर कहते हैं साहानी तन महच्छिद्रम, अगर कृष्ण के अतिरिक्त कुछ और सुन लिया तो फिर उसी की ओर आकर्षित होगा, तो आपका सबसे बड़ा लॉस यही है, सबसे बड़ा नुकसान यही है, सबसे बड़ी हानि यही है। और सामोह सच विभ्रमा, और अगर भगवान को भूल गए उस समय के लिए, एक क्षण के लिए भी, कि क्षणों यापी एक क्षण के लिए भी यदि आपने भगवान को स्मरण करना छोड़ दिया, तो फिर वो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित स्मर्तव्य सततम विष्णु। ये सतत शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंटिन्यूअस कृष्ण को स्मरण करना है, और विस्मर्तव्यो न जातुचित उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलना है, कंटिन्यूअस उसे याद करना है और उसको एक क्षण के लिए नहीं भूलना है। केवल यही सबसे बड़ा रूल एंड रेगुलेशन है भक्ति का। केवल सर्व विद्धि निषेधास्यो एतयोर एव किंकर। और उधर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं सततम चिंतयंतो माम, कंटिन्यूअस शब्द, कंटिन्यूअस भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो। और अगर आप कंटिन्यूअस मेरा स्मरण करोगे तेषां सतत युक्ता नाम, अगर आप सतत युक्त रहोगे, मुझे स्मरण करोगे, मेरा चिंतन करोगे, तो ददामि बुद्धि योगम तम। तो ये भगवान के आदेश को हमें देखना चाहिए कि भगवान हमें कह रहे हैं कंटिन्यूस मेरे विषय में श्रवण करो, कंटिन्यूस मेरे विषय में स्मरण करो, तो फिर इसी तभी मैं आपको वो बुद्धि दूंगा जिससे आपका कल्याण, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति, तब मैं आपको वो बुद्धि दूंगा जिससे आप मुझे प्राप्त कर सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में एक बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि जीव स्वाभाविक रूप से शाश्वत है, जीव शाश्वत है, वह भौतिक शक्ति यानी माया के संपर्क में रहने से जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। वैसे तो शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, लेकिन क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि भौतिक शक्ति माया के संपर्क में आ गया है, और माया के संपर्क में कैसे आया? माया की ओर आकर्षण उत्पन्न हो गया। माया की ओर आकर्षण कैसे उत्पन्न हो गया? माया के विषय में श्रवण किया, इंद्रियों से जब माया ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु पचः, इंद्रियों से जब ध्यान किया, इंद्रियों से विषयों में, तो फिर क्या हुआ, वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो ऐसी शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है। अब क्या करना हमें, हम जो माया के संपर्क, तो उस माया शक्ति से अब अपने को छुड़ाना है और भगवत जाने के योग्य बनना है। तो वो कैसे संभव होगा, तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो लोग अपने शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, यानी कि सताम बनना चाहते हैं, वो एक ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां पर उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा, वो शाश्वत लोक को जाना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उपाय बताया बहुत सरल, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए, केवल भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, हमें परख होनी चाहिए, एक भक्त को, एक वास्तव में जो भक्त है उसे परख होनी चाहिए कि जो मैं अभी श्रवण कर रहा हूँ वो क्या वास्तव में कृष्ण से रिलेटेड है, या केवल भ्रामक मुझे केवल मनोरंजन किया जाता है। ये कृष्ण कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कृष्ण कथा आत्मरंजन के लिए, क्योंकि आत्मा का कल्याण तभी होगा जब वो कृष्ण के विषय में श्रवण करेगा, क्योंकि आत्मा को केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करके ही आनंद आएगा। तो इसलिए हमें केवल उन्हीं विषयों को श्रवण करना चाहिए जो कि कृष्ण के से संबंधित हो। वास्तव में श्रोता जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक चातक, एक हंस और एक मीन। याद रखिएगा, हम श्रवण कर रहे हैं तो हमें इनमें से किसी एक प्रकार का श्रोता बनना चाहिए। चातक एक ऐसा पक्षी है जो केवल वही, बड़ी प्यास लगती है उसको, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, परंतु वो वही पानी की बूंद पीता है जो डायरेक्ट से बादल से निकलकर उसके मुख में आती है। वो मरते मर जाता है, लेकिन वो कभी भी किसी दरिया से, किसी समुद्र से, किसी ग्लास से पीता नहीं है, वो केवल वही एक बूंद पीता है। सारी जिंदगी जो है वो केवल आसमान की ओर देख रहा होता है कि कब बारिश बरसेगी और मुझे वास्तविक वो जो मेघ से मुझे जल चाहिए वो जल मुझे प्राप्त होगा, और गिरा हुआ जल नहीं पीता वो, डायरेक्ट से बादल से जब उसके मुख में आता है केवल वही पीता है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भी, उनको भी इस तरह से होना चाहिए कि केवल जो कृष्ण से रिलेटेड है वही वस्तु, वही चीज श्रवण करने, किसी की भी कथा में चले जाओ, कुछ भी श्रवण करके जाओ, ऐसा नहीं हमें समय अपना व्यस्त करना चाहिए। और दूसरा होता है हंस। हंस के अंदर वो क्वालिटी होती है कि उसको दूध और पानी को मिक्स करके एक जग बना के दे दो और उस ग्लास के अंदर खूब उसको शेक करो, पानी और दूध एकदम मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसको पिएगा, दूध दूध सारा पी जाएगा और पानी वहीं रखा होगा। वो केवल कृष्ण कथा, यानी भक्त को भी ऐसा होना चाहिए, कुछ और श्रवण आए तो उसे समझ, उसकी ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, केवल जो कृष्ण से रिलेटेड वस्तु है उसी को ग्रहण करना चाहिए। और दूसरा है मीन। मीन का मतलब होता है मछली। मछली जो है, अभी देखो समुद्र में दूसरे भी प्राणी रहते हैं, जैसे कछुआ भी समुद्र में रहता है, सर्प भी समुद्र में रहता है, मगरमच्छ भी रहता है, परंतु ये सब भले ही जल के अंदर रहने वाले हैं, लेकिन वो यदि जल से निकल जाते हैं बाहर भी तो भी उनका जीवन संभव है, वो जी सकते हैं, वो थल पे भी रह सकते हैं। परंतु एक मछली ऐसा जीव है, उसको यदि पानी से अलग कर दो तो उसका जीवन ही असंभव हो जाता है। उस तरह जो भक्त है वो कृष्ण कथा से नहीं अलग रह सकता, वो उसको यदि कृष्ण से, कृष्ण की कथाओं से दूर कर दिया जाता है तो वो तड़पने लगता है कि मुझे किस तरह से कृष्ण के विषय में श्रवण करने को मिले। तो हमें इसमें से किसी एक तरह का श्रोता बनना चाहिए। बाकी तो सुनते भी हैं मगर वो श्रोता नहीं होते हैं। दूसरे भी दो टाइप के लोग होते हैं जो श्रवण करते हैं कथा को, वो क्या होते हैं, या तो सरोता होते हैं या तो सोता होते हैं। सरोता क्या होता है, जैसे सुपारी होती है ना, जो मोटी वाली गोल, उसको काटने के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है, जो ऐसे क्लिक करते हैं और फिर काट देता है उसको, सुपारी को, उसको ऐसे लोग जो कथा सुनते हैं उसको सरयोता कहते हैं। वो क्या करते हैं, बस केवल काटने के लिए ही सुनते। ये ऐसे बोल रही है, इसको तो सही तरह से बोलना भी नहीं आता है, इसको सही तरह से वर्ड भी उच्चारण करने नहीं आते, बस खाली दोष देखते कथा के अंदर, दोष देखते हैं कि व्यास आसन अच्छा नहीं था या ये अच्छा नहीं था, इस तरह से बोला इस तरह से बोला। तो वो केवल, और वो ये कपड़े पहन के आई थी, वो देखेंगे सिर्फ, ऐसे मंदिर में ऐसे आना चाहिए। आप आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, कथा को सुनो और जाओ, और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसकी ओर आपको देखने की क्या जरूरत है। तो वो लोग को कथा से इतना वो नहीं होता, रुचि नहीं होती है, वो अन्य चीजों को देख रहे होते हैं। और एक होते सोता, वो सुनना, जैसे ही बटन ऑन करते हैं मोबाइल का, लेक्चर ऑन किया, हैंड फ्री डाला और आराम से एक घंटे के बाद उठते हैं, सोता। लेकिन हमें सोता नहीं बनना, श्रोता नहीं बनना, सरयोता नहीं बनना, बल्कि श्रोता बनना है। कैसा बनना है, या तो याचक, या तो फिर मीन या हंस की तरह, चातक पक्षी की तरह बनना है, कि हमें केवल और केवल भगवान के विषय में ही श्रवण करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहेंगे और अपना भगवान की ओर आकर्षण बढ़ाकर इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयास करेंगे। भगवान के चरण कमलों में अपना आकर्षण को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण।